मुझे जंगे आज़ादी का मज़ा मालूम है, बलूचिस्तान पर जुल्म की इंतहा मालूम है। मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ ना दो, मुझे पाकिस्तान में 60 साल जीने की सजा मालूम
ये शब्द हैं पाकिस्तान के क्रांतिकारी और व्यवस्था विरोधी कवि हबीब जालिब के। पाकिस्तान के उदय के 72 साल बाद भी वहां के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान को पाकिस्तान का सबसे तनावग्रस्त इलाका माना जाता है। बलूचिस्तान की कहानी बगावत, हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों की कहानी है। मशहूर पत्रकार नवीद हुसैन कहते हैं कि बलूचिस्तान जातीय और पृथकतावादी हिंसा की उस कड़ाही की तरह है जो कभी भी उबल सकती है। आखिर बलोच अलगाववाद के कारण क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई? द बलूचिस्तान कॉनंड्रम के लेखक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में विशेष सचिव रहे तिलक दिवेशर बताते हैं।
शुरुआत तो 1948 से थी, क्योंकि ज्यादातर जो बलोच हैं वो समझते हैं कि जिस तरह से उनका फोर्सेबल किक सेक्शन किया गया पाकिस्तान के साथ वो इलीगल था, और जो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली बलूचिस्तान कभी हिस्सा नहीं था, और जब ब्रिटिश गए तो उसने अपनी आज़ादी डिक्लेयर की और ये बात पाकिस्तान ने कबूल की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने उस पर साइन किया था कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो वो बाद में वो उस पर मुकर गए। अक्टूबर में उन्होंने खान को किया 47 में कि आप पाकिस्तान के साथ आप मर्ज कर दीजिए, एक्सेशन कर दीजिए। जो बलूचिस्तान की कलात की कॉन्स्टिट्यूशन थी, दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट थे उसमें, तो खान ने उन दो हाउसेज पे ये निर्णय छोड़ दिया कि क्या करना चाहिए, तो दोनों हाउसेज ने इसको रिजेक्ट किया कि हम एक्सेशन पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। उनको फोर्स किया गया, मार्च 48 में पाकिस्तान आर्मी आई, खान को किडनैप करके कराची ले गए और वहां उन पर दबाव डाल के उसे एक्सेशन साइन कराया गया।
आर्थिक और सामाजिक पैमानों पर बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे पिछड़े हुए राज्यों में से एक है। 70 के दशक में पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में बलूचिस्तान की भागीदारी 4.9% थी, जो सन 2000 में गिरकर सिर्फ 3% रह गई। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत और विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू कहते हैं,
अगर आप सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो उस लिहाज से तो बलूच जो है पिछड़े हुए, उनका इलाका जो है वो तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, आबादी कम है। लेकिन बलूचिस्तान में अब बलूच तो अब की अक्सरियत भी शायद नहीं, पश्तून आ गए हैं, सिंधी हैं, पंजाबी बसे हैं, और बलूच कौम जो है वो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं। उनका पार्टिसिपेशन अगर आप देखें पाकिस्तान के जीवन नेशनल लाइफ में वो बहुत ही कम है। रिसोर्सेज बलूचिस्तान में बहुत है, हाँ सूखा ज्यादा है, वहाँ पानी नहीं ज्यादा बरसता है, लेकिन हॉर्टिकल्चर का तो है अच्छा सिलसिला। सबसे ज्यादा जो उनको मुझे लगता है बात चुभी है वो कि हाइड्रोकार्बन्स उनके ही वहाँ, सुई गैस के नाम से तो हम सब परिचित हैं, लेकिन सुई गैस पाकिस्तान के शहरों के घरों को उजागर करती थी लेकिन बलूचिस्तान में अंधेरा था।
लेकिन पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक रहीमुल्ला यूसुफजई मानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने जानबूझकर बलूचिस्तान को पिछड़ा नहीं रखा है।
देखिए बलूचिस्तान तो वैसे शुरू ही से पसमांदा रहा है, और ये चूंकि रकबा बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कमजोर था, तो वो तो शुरू से ये हालात ऐसे ही थे। अलबत्त ये है कि हुकूमत ने भरपूर तवज्जो भी नहीं दी, और फिर बलोच चूंकि पीछे रह गए थे तो उनको ये एहसास था कि उनको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए उनके बारे में हुकूमत को, क्योंकि ये इनके अपने लोग सिक्योरिटी के इदारों में कम थे और बाहर से लोग आए, तो ये भी एक मामला था जिसको उठाया गया। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि इसको कोई डिलिबरेटली पीछे रखा गया, یعنی یہ سمجھنے کی حکومتوں کی اور اداروں کی ایک قسم کی ناکامی تھی. اس طرح کی صورتحال تو یہاں پر فاٹا میں تھی جو قبائلی علاقہ ہے، اس کو بھی توجہ نہیں دی گئی اور بعد میں مسئلے کھڑے ہوئے. تو پاکستان میں جو ترقی ہوئی ہے وہ یکساں نہیں ہے، کچھ علاقوں کو زیادہ توجہ دی گئی اور کچھ کو بہت ہی کم دی گئی.
بلوچستان کے سامرک مہتو نے اس کی طرف برٹن کا دھیان آکرشت کیا تھا، لیکن اس کا اس کو نقصان اٹھانا پڑا. اس کا 760 کلومیٹر لمبا سمندر تٹ پاکستان کے کل سمندر تٹ کا 2/3 ہے. اس کے 180,000 کلومیٹر کے وشال وشیش آرتھک کھیتر کا ابھی تک پریاپت دوہن نہیں ہو پایا ہے.
مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے چاروں پروونسز صوبے جو ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ اسٹریٹجک امپورٹینس اس کی ہے، کیونکہ ایک تو اس کا لینڈ ایریا اتنا بڑا ہے، 2/3 کوسٹ لائن پاکستان کی، پوری کوسٹ لائن کو ملا جی وہ بلوچستان کی ہے. گوادر کا ڈیپ سی پورٹ کی پوٹینشیل ہے، کوسٹل فشنگ، ایکسکلوسیو اکنامک زون جو ابھی تک ایکسپلوئٹ ہی نہیں کیا گیا، وہ سب بلوچستان کے اس میں وسائل میں آتا ہے. پھر جو ریسورسز گیس کا میں نے ذکر کیا، کاپر ہے، گولڈ ہے، یورینیم ہے، یہ سب چیزیں بلوچستان میں ہیں. اور جو ٹیسٹنگ سائٹ ہے، اور جب یہ افغانستان میں وار آن ٹیرر کے تحت یو ایس اے نے جب اٹیک کیا تو بیسز یہاں تھے.
بلوچ آندولن کو پاکستانی سینا نے ہمیشہ طاقت کے بل پر کچلنے کی کوشش کی ہے. 1959 میں بلوچ نیتا نوروز خان نے اس شرط پر ہتھیار ڈالے کہ پاکستان کی سرکار اپنی ون یونٹ یوجنا کو واپس لے لے گی، لیکن سرکار نے ان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ان کے بیٹوں سہت ان کے کئی سمرتکوں کو پھانسی پر چڑھا دیا.
وہ 80 سال کے بزرگ تھے، تو جب یہ ون یونٹ لایا گیا اور بلوچستان باقی پروونس پورے ویسٹ پاکستان میں ضم ہو گیا، تو انہوں نے بغاوت کی، یہ دوسری بغاوت تھی، اور وہ ہلز میں چلے گیا. وہ بھی 1 سال تک وہ لڑے. پھر پاکستان آرمی نے ان کو میسج بھجوایا کہ آپ نیچے آ جائیے، ہم آپ کو سیف میسج دیں گے، اور قرآن شریف پر یہ قسم کھا کے ان کو دلاسا دیا گیا کہ آپ آ جائیں، کچھ نہیں کریں گے. جیسے وہ آئے اور ان کے 11 ساتھیوں میں 2 بیٹے بھی تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، مارشل لا کورٹ میں ان کو ٹرائی کیا گیا اور ڈیتھ سینٹینس سب کو دے دیا. کیونکہ 80 سال کے تھے، ان کو ڈیتھ سینٹینس کیری آؤٹ نہیں کیا، لائف امپریزنمنٹ دی. اور یہی نہیں، پھانسی پہ لٹکا کے ان کی جو پارتھک شریر زمین پر تھا، آرمی میجر نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا ان میں سے کون سا ہے، تو نوروز خان بولے یہ سارے میرے بیٹے ہیں. اور پھر ایک جو ان کا بیٹا تھا، جب اس کی پھانسی پہ لٹکا تھا تو اس کی مونچھ نیچے ہو گئی تھی، تو 80 سال کا بزرگ نیچے بیٹھتا ہے اور اس کی مونچھ کو تاو دے کے اوپر کرتا ہے اور بولتا ہے کہ موت میں بھی دشمن کو یہ نہیں پرتیت ہونا چاہیے کہ تم نے ہار مان لی ہے اور یو ہیو ڈسپیئرڈ. تو یہ بلوچ قوم کی ایک طرف سے پہچان ہے کہ کتنے اسٹرانگ اور ڈٹرمنڈ لوگ ہیں یہ.
1974 میں جنرل ٹکا خان کے نیتتو میں پاکستانی سینا نے میراج اور F-86 یدھک ویمانوں کے ذریعے بلوچ علاقوں میں بم گرائے، یہاں تک کہ ایران کے شاہ نے اپنے کوبرا ہیلی کاپٹر بھیج کر بلوچ ودروہ کے علاقوں پر بمباری کروائی،
ایئر پاور یوز کی. اور وہاں ایران کا بھی بڑا، شاہ کا بھی رول تھا، اس سے کوبرا ہیلی کاپٹر بھیجے ایرانین پائلٹس سے اور پیسے دیے پاکستان کو، بھٹو کو، اور انہوں نے اندھا دھند ایئر پاور کا یوز کر کے بچے، عورتیں اور فائٹرز تو خیر تھے ہی، بری طرح سے ان کو قتل کیا. اور اس کے بعد آج تک جب بھی کچھ ہوتا ہے پاکستان ایئر پاور پہلے یوز کرتی ہے. ہندوستان میں بھی کئی ایسے ہوئے ہیں، انسرجنسیز ہوئی ہیں ڈفرنٹ پارٹس آف دا کنٹری، وی ہیو نیور یوزڈ ایئر پاور آن سویلینز اور ایون آن ٹیررسٹ.
26 اگست 2006 کو جنرل پرویز مشرف کے شاسن کال میں بلوچ آندولن کے نیتا نواب اکبر بختی کو سینا نے ان کی گفا میں گھیر کر مار ڈالا. بختی بلوچ آندولن کا بڑا نام تھا، وہ گورنر اور کیندر سرکار میں منتری رہ چکے تھے. اس گھٹنا نے آندولن کو کچلنے کے بجائے انہیں اس کا ہیرو بنا دیا. اپنی موت سے کچھ سمے پہلے بختی نے اپنے گپت ٹھکانے سے سیٹلائٹ فون پر پاکستان کی راجنیک اور منتری رہیں سیدہ عابدہ حسین سے بات کرتے ہوئے کہا تھا،
میں نے اپنی زندگی کے 80 بسنت دیکھ لیے ہیں اور اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. آپ کی پنجابی سینا مجھے مارنے پر تلی ہوئی ہے، لیکن اس سے آزاد بلوچستان کی مہم کو مدد ہی ملے گی. میرے لیے شاید اس سے اچھا انت نہیں ہوگا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے اس کا رتی بھر دکھ نہیں ہوگا.
تب سے لے کر اب تک پاکستانی سینا پر بلوچ کوز کے لیے لڑ رہے لوگوں کو غائب کرنے اور ان کی گپ چپ ہتیا کے کئی آروپ لگے ہیں. मार्च 2007 में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने वहां के सुप्रीम कोर्ट के सामने उन 148 लोगों की सूची पेश की जो अचानक गायब हो गए थे और उनके बारे में उनके रिश्तेदारों तक को कुछ भी पता नहीं था। वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफ सही बताते हैं।
सिर्फ दो इश्यूज हैं, गुमशुदा अफराद का मसला है, मिसिंग पर्सन, और एक ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, लोगों को उठा लेना और लोगों की फिर लाशें मिलना। ये तो मसला रहा है यहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि एक फरीक ये कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी होता है कि फौज के ऊपर और फ्रंटियर को और मिलिशिया के ऊपर भी हमले होते हैं और फिर जाहिर है वो उसका जवाब देते हैं। तो ये चूंकि इंसर्जेंसी चल रही है तो इसमें फिर जिसके ऊपर शक होता है उन लोगों को उठा लिया जाता है, हालांकि ये सही तरीका नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जंग में तो फिर इस तरह के वाकयात होते हैं।
कुछ साल पहले चीन ने उस इलाके में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर करीब 60 अरब डॉलर निवेश करने का फैसला किया था। पाकिस्तान में तो इसे गेम चेंजर माना गया, लेकिन बलूचिस्तान वासियों ने इसे पसंद नहीं किया।
चाइना का ये जो मंसूबा है ये कि ग्वादर आउटलेट है इनटू द अरेबियन सी, क्योंकि शुरू शुरू में जब एक कंसेप्शन हुआ था कि वो जो उनका इस तरह का वेस्टर्न पोर्शन है सिंजियांग, और वहाँ से वो एक रूट बन जाता है पाकिस्तान के थ्रू इनटू द अरेबियन सी, क्योंकि उनके लिए पूरा साउथ चाइना सी जाने का वो चोक पॉइंट है वहाँ पे, तो अगर कभी उनको खतरा हो किसी तरफ से तो उनकी सारी ऑयल और बाकी जो गुड्स हैं वहाँ पे रोक लग सकती है। तो एक ऑल्टरनेटिव रूट उन्होंने पाकिस्तान से किया, एक ऑल्टरनेटिव रूट बर्मा से भी है। एक तो ये था कि ग्वादर आउटलेट होगा और हम एक कॉरिडोर बनाएंगे जहाँ से हमारे गुड्स काराकोरम हाईवे से गिलगित बाल्टिस्तान में आके पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पे चले जाएंगे। अब मसला ये है कि कॉरिडोर का आउटलेट है बलूचिस्तान में ग्वादर, होना तो यही चाहिए था कि जो वहाँ के जो लोग हैं, ग्वादर एक फिशिंग टाउन है, वहाँ पे ज्यादातर मछुआरे हैं जो फिश करते हैं, अच्छा उनको पकड़ के उन्होंने बाहर कर दिया, जो उनकी फिशिंग की जो मेन एरिया था वो उनके लिए बंद कर दिया, तो वहाँ भी रिजेंटमेंट है। और सबसे ज्यादा मसला ग्वादर में जो है वो पानी का है, पीने का पानी नहीं है वहाँ पे, और लोग कहते हैं जब भी घर में चोरी होती है तो पहली चीज चोर लेते आते हैं पानी के कंटेनर चोरी करते हो। तो ये सब चीजें प्लान नहीं की बलूचिस्तान और बलूचों को अपनी कॉन्फिडेंस में लेके भी हम ये इस तरह का डीप सी पोर्ट बना रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आप किस तरह से खुश होंगे, तो कोई बलोच की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है।
3 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ गया। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस तरह बलूचिस्तान का जिक्र किया था।
पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है।
इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्विट्जरलैंड में रह रहे बलोच विद्रोही नेता ब्रहमदाग पुख्ती ने कहा,
बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा एक अमल है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर स्टैंड ली और बात की, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। सिचुएशन वहां पर इज वॉर लाइक सिचुएशन, एक जंग हो रही है वहां पर, कुछ एरियाज हैं जैसे क्वेटा शहर कहें सिटी कहें, हैविली वहां पर आर्मी और एफसी डिप्लॉय है, लोगों को अगर कोई भी एक्टिविटी कोई पॉलिटिकल छोटा सा भी करे उसको उठा के ले जाते हैं, तो वो इम्पॉसिबल है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वहां पर कुछ भी एक्टिविटी ओपनली करें।
लेकिन पाकिस्तान में मोदी के इस वक्तव्य को उनके आंतरिक मामलों में दखल की तरह लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस आंदोलन को भारत का समर्थन मिल रहा है।
लेकिन पाकिस्तानी हुकाम तो ये अभी इल्जाम लगाते हैं कि इनको बाहर से सपोर्ट मिल रही है। CIA का नाम तो खुलेआम नहीं लेते, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और रॉ का नाम लेते हैं, इसलिए भी आजकल ज्यादा ले रहे हैं कि पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण यादव जो कि इंडियन नेवी का इनके मुताबिक सर्विंग ऑफिसर है, उसको रंगे हाथों बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया और वो जासूस है और वो ईरान के बंदरगाह चाबहार से बलूचिस्तान में दाखिल होकर यहाँ पर अलहदगी पसंदों की मदद कर रहा था। और फिर चूंकि वज़ीर आज़म मोदी ने तकरीर की पिछले साल, तो उन्होंने भी बलूचिस्तान का जिक्र किया था। हम देखते हैं कि इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो बलूचिस्तान में बड़ा है। हालांकि जब वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात हुई थी शर्म अल शेख में मिस्र में, उसमें ये पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि बलूचिस्तान के ऊपर भी इंडिया से मुज़ाकरात होने चाहिए और इंडिया मान गया था। हम तो ये समझते हैं कि अगर इंडिया को मौका मिलेगा तो वो क्यों उससे फायदा नहीं उठाएगा, पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा।
सवाल उठता है कि क्या इस आंदोलन में एक आजाद बलूचिस्तान बनवा पाने का सामर्थ्य है या नहीं। स्टीफन कोहेन अपनी किताब द आइडिया ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं,
बलोच आंदोलन की सबसे बड़ी कमी है एक मजबूत मध्यम वर्ग और आधुनिक नेतृत्व का अभाव। बलोच लोग वैसे ही पाकिस्तानी आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है। उन्हें अपने प्रांत में पश्तूनों की लगातार बढ़ती आबादी का भी मुकाबला करना पड़ रहा है। दूसरे, उन्हें न तो ईरान से और न ही अफगानिस्तान से कोई मदद मिल रही है, क्योंकि इससे उनके अपने देश में बलोच विद्रोह को बढ़ावा मिलेगा।
बलोच आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी कम आबादी। दूसरे, ये लोग अभी तक शासन का कोई वैकल्पिक ब्लूप्रिंट लेकर सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन विवेक काटजू इस आकलन से सहमत नहीं है।
मुझे लगता है कि जब इंसर्जेंसी सक्सीड करती, जहां भी करी, वहां पर नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया जन्म लेती है और फिर वो सक्सीड भी करती। मुश्किलें पड़ती हैं, लेकिन वो फिर सक्सीड भी करती। तो आज से ये प्रीजज करना कि ये नहीं होगा वायबल, ये ऐतिहासिक रूप से कह रहे हैं, ये तो हम लोग कंसेप्चुअल बात कर रहे हैं, तो उस तरह अगर आप देखें तो वो मुझे नहीं।
दूसरे, बलोच आंदोलन की एक और बड़ी कमी है इसके नेतृत्व का बुरी तरह से बटा होना।
ये आपस में इत्तेफाक नहीं है, इसमें कुछ कबीलों की बुनियाद के ऊपर तंजीमें बनी हैं, कुछ इलाकाई तंजीमें बनी हैं। अक्सर के जो रहनुमा है वो बलूचिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, वो बाकी मुल्कों में उनको सियासी पनाह मिल गई है। यूके में है, स्विट्जरलैंड में है, यूएई में है, और वो कुछ कहते हैं कि इंडिया में भी है। इनके पास बाकी भी कोई सियासी और इकतसादी और कोई इस तरह का प्रोग्राम भी नजर नहीं आता।
पाकिस्तान पर नजर रखने वाले टीकाकार अभी भी बलोच आंदोलन को लो लेवल इंसर्जेंसी की संज्ञा देते हैं। मैंने तिलक देवेशर से पूछा कि आप इस आंदोलन के सफल होने की कितनी संभावना देखते हैं।
सफल होने के बीच तो हैं, मगर उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो अगर पाकिस्तान स्टेट जिस रास्ते पर चला है, इंटरनल इम्प्लोजन इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी आप जानते हैं इतने सजे कगार पे खड़ी है कि वो कभी भी बैठ सकता है। पाकिस्तान में पानी का बड़ा मसला है, तो अगर पाकिस्तान स्टेट वीक होता है और पाकिस्तान स्टेट अंदरूनी तरफ से कोलैप्स करने लगता है, तब बलोचों को भी मिलता है। रे ऑफ होप इज कि जो बलोच मिडिल क्लास बलोच हैं, जो मकरान कोस से हैं, वो अब लीडरशिप पोजीशंस में आगे आ रहे हैं और उनका एक यूनिफाइड बलोच रादर देन इज अ ट्राइबल, तो उससे लगता है कि हाँ आगे चलकर इनकी एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट होगी। तो एक तो बलोचों को खुद में अपनी यूनिटी पैदल करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान स्टेट अगर वीक होता है, या कोई इस तरह का ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं इंग्लिश में, कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट बट जिसकी बहुत रेमिफिकेशंस हो। अब कल को पता नहीं यूएस की पोजीशन क्या बनती है ईरान के खिलाफ, अगर यूएस का कुछ ऐसा कुछ होता है तो आगे चल के क्या होगा ये नहीं कह सकते, मगर सीड्स तो डेफिनेटली, बिकॉज बलोच एलिनेशन इतनी हाई है और इतनी फैली हुई है पूरे बलूचिस्तान में, तो पाकिस्तान को ये अपने इसको पुल बैक करना, अपनी पूरी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी अपनी पॉलिसीज जो अभी अपना रही है वो उसको चेंज करे।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।